आशिका के पास रेहान का कॉल आया था, जो उसकी परवाह कर रहा था। आशिका ने उसे अभिमान से मिलने से लेकर उसकी शादी और अभिमान के आकाश के बेटे होने तक की पूरी कहानी बता दी थी। इस बीच रेहान ने आशिका से पूछा कि उसकी और अभिमान की शादी कैसे हुई थी। जिस तरह से अभिमान और आशिका की शादी हुई थी और उसके बाद आकाश और बाकी फैमिली उन्हें तलाक के लिए दबाव डाल रही थी, ऐसे में आशिका को सोचने का मौका ही नहीं मिला। आशिका ने कॉल कट किया और तुरंत अभिमान से इस बारे में पूछने के लिए उसके वर्क स्पेस में जाने लगी। लेकिन अभिमान उसकी बातें सुन रहा था और उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। आशिका ने हैंडल पकड़ा और दरवाज़ा खोलना चाहा, तो वो अंदर से लॉक था। आशिका ने दरवाज़ा खटखटाते हुए अपने आप से कहा, जहाँ तक मुझे याद है अभी कुछ देर पहले ये दरवाज़ा खुला था और इतनी देर में बंद कैसे हो गया? डोर ओपन करो अभिमान, मुझे तुमसे बात करनी है। आशिका की आवाज़ धीमी जरूर थी, लेकिन हाँ उसमें बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। ये बात तो उसे इतने वक्त से परेशान कर रही थी कि आखिर बिना उसके कोर्ट रूम जाए उसकी शादी कैसे हो सकती थी। वहीं अभिमान दरवाजे के दूसरी तरफ ही खड़ा था और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था। मुझे काम करना है ऐश, और मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हें भी जब अकेला रहना होता है तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, अभिमान ने जवाब दिया। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, बस मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, आशिका बोली। अभिमान के दरवाज़ा न खोलने पर उसे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डोर खोलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। मुझे बस ये जानना है कि हम दोनों की शादी कैसी हुई थी, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? अभिमान को लगा कि वो आशिका को टाल देगा तो वो उससे इस बारे में बात नहीं करेगी। उसके दरवाज़ा न खोलने पर आशिका ने काफ़ी स्मार्टली बाहर से ही सब कुछ पूछ लिया था। देखो ऐश, वो मेरी लाइफ का बहुत ही बुरा फेज था और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों ने पूरे रीति रिवाज से शादी की है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, और तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, अचानक अभिमान के मुंह से निकला, जिस पर आशिका की आंखें बड़ी हो गई थी। अभिमान की बातों से वो समझ गई थी कि वो उसकी बातें सुन चुका है। उसने तुरंत कहा, तो तुमने मेरी बात सुन ली, ये बहुत गलत है, तभी तुमने इस तरह खुद को कमरे में बंद कर रखा है ताकि मैं इस बारे में ना पूछ सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मेरी बातें सुनने की बात को इग्नोर करके जाने देती हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मैं नहीं बताने वाला, अभिमान जल्दी से बोला। वो नहीं चाहता था कि आशी और उसके बीच जो भी हुआ इस बारे में आशिका को पता चले। वैसे भी अभिमान पहले जिस तरह का दिखता था और जितना अंडर कॉन्फिडेंट था, वो नहीं चाहता था कि इस बारे में आशिका को पता चले। तुम कब तक मुझसे छुपाते रहोगे? कभी ना कभी इस कमरे से बाहर आना ही पड़ेगा और मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, बेहतर है अभी बाहर आ जाओ, आशिका ने झुंझलाकर कहा। कुछ और ट्राई करो मिसेज राजवंश, फिलहाल तो मैं बाहर नहीं आने वाला, अभिमान ने टीजी वे में कहा। आशिका को उस पर गुस्सा आ रहा था, एक तो वो उसे सच नहीं बता रहा था, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आशिका का मन कर रहा था कि वो कमरे का दरवाजा तोड़े और अभिमान की कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच कर लेकर आए और फिर सब सच पूछे। आशिका बिल्कुल शांत थी और अपने मन में ये सब कर भी चुकी थी। वहीं उसके कोई जवाब न देने पर अभिमान ने कहा, कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुद बाहर आने पर मजबूर हो जाऊं, शायद फिर मेरा मूड बदल जाए और मैं तुम्हें सब बता दूं। बिल्कुल, आशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया और नरम लहजे में बोली, तुम मेरी आईज का कलर देखना चाहते थे ना, मुझे सच बता दो फिर देख लेना। आशिका सबसे बड़ा समझौता करने तक के लिए तैयार हो गई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी आंखों का कलर जो भी हो, मेरे लिए वो प्यारी सी लाइट ब्राउन आईज है, फिर चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस का ही कलर क्यों ना हो, अभिमान ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। तो क्यों ना हम वो करें जो रात को किया था, तुम बेड पर बहुत अच्छे हो, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैं थोड़ी थकी हुई और परेशान भी थी तो काफ़ी इनएक्टिव थी, तुम चाहो तो मैं एक्टिव रहकर तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, ट्रस्ट मी मैं भी उतनी बुरी नहीं हूँ, आशिका ने उसे ललचाते हुए कहा, जिस पर अभिमान ने अपनी मुट्ठियों को कसके बंद कर लिया था। जिस तरह अभिमान रात को उसके साथ बेड पर बेचैन हो रहा था, उससे आशिका को अंदाजा हो गया था कि वो किस हद तक उसकी करीबी चाहता है। हालांकि उसने यही सोचा था कि कल रात के बाद वो अभिमान के करीब नहीं जाएगी, लेकिन सच जानने के लिए उसने ये शर्त तक रखती थी। ये लड़की जानबूझकर मुझे टेम्प्ट कर रही है, अभिमान ने मन ही मन बुदबुदा कर कहा। तुमने जवाब नहीं दिया, क्या आप तो मेरे लिए डोर ओपन करोगे, आशिका ने पूछा। नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, और इस तरह खुद का इस्तेमाल करना बंद करो, अभिमान ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। हालांकि आशिका के करीब आने से इनकार करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। इससे पहले कि आशिका कोई और शर्त चखती, उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आशिका और अभिमान को यही लगा कि आकाश फिर से उनके कमरे में आ गया है। आशिका को परेशान करने और अपनी जिद के चक्कर में अभिमान उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता था, वो तुरंत कमरे से बाहर आया। अभिमान ने आशिका की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं देखता हूँ कौन है, तुम अंदर रूम में जाओ।
आशिका भी बिना किसी बहस के कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि तभी बाहर से आवाज आई। तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे लगा तुम तो ऑफिस आओगे नहीं, मैं ही तुम्हारे पास चला आता हूँ। वैसे भी तुमने इस शादी को लेकर मुझे बहुत ताने मारे हैं, लेकिन अब जब तुम्हारे पसंद की लड़की मिल गई तो थैंक्स कहने के लिए एक कॉल तक करने की जहमत नहीं उठाई गई तुमसे। दरवाजे के बाहर रचित खड़ा हुआ था और उसकी आवाज सुनकर उन दोनों के चेहरे पर ही हैरानी के भाव थे। आशिका ने हमेशा अभिमान से यही सुना था कि उसकी और आशिका की शादी की वजह रचित था। अभिमान ने आशिका के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसे रोक पाता उससे पहले आशिका ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया था। अच्छा तो तुम दोनों साथ में थे, सॉरी मैं भूल गया था कि अब तुम ऑफिशियली भी मैरिड हो चुके हो, कहीं मैंने गलत टाइम पर तो डिस्टर्ब नहीं किया? रचित ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, चलो अंदर आओ, आशिका ने जवाब दिया और रचित को अंदर की तरफ खींचकर फिर से दरवाजे को बंद कर दिया था। हम अकेले में बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अभिमान बोला और रचित को ले जाने के इरादे से उसके पास आया। रचित के एक हाथ को अभिमान ने तो दूसरे हाथ को आशिका ने पकड़ रखा था। रचित हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। आज से पहले अभिमान भी उससे बचता फिरता था, तो वहीं आशिका उसे देखकर ऐसा लुक देती थी जैसे वो उसे कितना पकाता हो। अरे अरे क्या हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी करवाकर मैंने बहुत पुण्य का काम किया है और इसके लिए तुम दोनों ही मुझे थैंक्स कहना चाहते हो, पर जिस तरह तुम दोनों मुझे खींच रहे हो मुझे लगता नहीं कि मैं फ्यूचर में किसी के आगे नमस्ते करने के लायक रहूंगा। छोड़ो मुझे, रचित ने झुंझलाकर कहा।
उसने अपने दोनों हाथ झटक कर उन दोनों से अलग कर लिए थे। मौके का फायदा उठाते हुए आशिका ने जल्दी से कहा, हाँ सच में हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, तुमने हम दोनों की शादी करवाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुमने हमारी शादी कैसे करवाई? शादी ट्रेडिशनल तरीके से हो या कोर्ट में सिंपल तरीके से, लेकिन दोनों में ही लड़का लड़की का अवेलेबल होना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे याद है मैं ना तो शादी करने के लिए कोर्ट गई थी और ना ही पहले अभिमान से मिली हूँ ताकि उसके साथ किसी तरह की ट्रेडिशनल वेडिंग कर सकूँ। अब रचित को समझ आ गया था कि अभिमान उसे क्यों खींच रहा था। उसने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान ने ना में सिर हिला दिया था। उसका इशारा साफ था कि वो आशिका को इस बारे में कुछ न बताए। वहीं दूसरी तरफ इशिका और अभिमन्यु अभी उस 5-स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। खाना इशिका ने बनाया था और अभिमन्यु इशिका की कुकिंग स्किल से पहले से ही वाकिफ था। अगर वो चाहती तो एक टॉप लेवल शेफ भी बन सकती थी। अभिमन्यु हर एक डिश को चख रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था, वहीं इशिका थोड़ा खोई हुई थी। वैसे तो मैं तुम्हारे एक से ज्यादा काम संभालने के खिलाफ हूँ, ऊपर से तुम बर्डन भी बहुत लेती हो, लेकिन तुम्हें अपने कुकिंग टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि तुम सच में बेमिसाल हो, अभिमन्यु बोला। इशिका जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने अचानक पूछा, तुम्हारी आशिका से क्या बात हुई थी? राजवंश फैमिली में उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है ना? मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने भी शाम को जाने का सोचा है और वो ठीक है, उसने बस तुम्हारे बारे में पूछने के लिए कॉल किया था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने फिलहाल के लिए आशिका के डाउट को इशिका से छुपा लिया था। ठीक है, फिर हम लंच के बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे ताकि आशिका के लिए गिफ्ट ले जा सके। वैसे भी हमने उसे शादी में कोई गिफ्ट नहीं दिया, इशिका बोली, जिस पर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए सहमति जता दी थी। वो खुद आशिका और अभिमान का हालचाल जानने के लिए राजवंश मेंशन जाना चाहता था, बस इशिका के लिए ही उसने खुद को रोक रखा था। अच्छा ठीक है, सब कुछ इवनिंग पर छोड़ देते हैं। और तुमने फिर से स्ट्रेस लेना क्यों शुरू कर दिया? मैंने कहा ना, अब आशिका बिल्कुल ठीक है और अभिमान उसका ख्याल रख लेगा, तुम मुझ पर फोकस करो, अभिमन्यु हल्के लहजे में बोला ताकि इशिका का ध्यान भटक जाए। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने एक प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया जिस पर खूबसूरती से सजे हुए डेजर्ट थे। ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, इशिका बोली और उसने चम्मच से अभिमन्यु को खिलाना शुरू कर दिया था। उन दोनों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अभिमन्यु ने आसपास के वेटर तक को हटा दिया था। उन्हें यही लग रहा था कि वे दोनों इस जगह पर अकेले हैं, लेकिन वहां कोई और भी मौजूद था जो उन्हें देख रहा था। वहीं अभिमान के कमरे में अभिमान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रचित का मुंह खुलने से उसे रोक सके, लेकिन आशिका भी जिद पर अड़ी हुई थी। जब ये नहीं बताना चाहता है तो तुम क्यों फोर्स कर रही हो? अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो अपना मामला खुद निपटाओ ना, मुझे बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? उनकी बहस से परेशान होकर रचित बोला। इतनी देर में आशिका एक बात तो समझ गई थी कि अभिमान की मंजूरी के बिना रचित अपना मुंह नहीं खोलने वाला है। वो अभिमान को भी हर तरीके से मना कर देख चुकी थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आशिका ने गुस्से में अपने दोनों हाथ बांधे और बोली, ठीक है मत बताओ, मैं इस कमरे में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, आशिका बोली और उस कमरे से जाने लगी। तभी अभिमान पीछे से धीमी और शांत आवाज में बोला, पहले मैं किसी और लड़की को पसंद करता था जो आशी की फ्रेंड थी, जैसा कि तुमने मेरे सर्टिफिकेट में मेरी फोटो में देखा होगा। मैं अच्छा नहीं दिखता था और बहुत मोटा था, इस वजह से मेरे प्रपोज करने पर आशी ने मेरा मजाक बनाया। आशिका का चेहरा दूसरी तरफ था और इस वक्त उसके चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी।
वो जानती थी कि अभिमान उसकी बाकी जिद के आगे भले ही ना झुके, लेकिन उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देगा, खासकर उन हालातों में जब आकाश बाहर ताक लगाए बैठा था। आशी ने कहा था कि कोई भी लड़की इससे शादी नहीं करेगी, आगे की कहानी रचित बताते हुए बोला। उसने अभिमान को बहुत ह्यूमिलिएट किया था और उसकी वजह से ये कहीं टूट भी गया था। मुझे उस लड़की से पहले से ही नफरत थी, ऊपर से उसने मेरे फ्रेंड की इंसल्ट की थी, उसे उसके प्यार के सामने नीचा दिखाया था। उसी समय मैंने सोच लिया था कि जिस लड़की ने इसे ये कहा है कि कोई उसे शादी नहीं करेगा, उसी को मैं इसकी पत्नी बनने पर मजबूर कर दूंगा, और फिर मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। आशिका ने गहरी सांस ली और उन दोनों की तरफ पलट कर बोली, जब आशी उससे नफरत करती थी तो फिर शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? ऊपर से इसकी शादी उसके साथ नहीं, मेरे साथ हुई थी। सीधा सीधा बताओ शादी कैसे हुई थी, वरना तुम दोनों के नखरे मैं और नहीं झेलने वाली हूँ। आशिका बुरी तरह चिढ़ गई थी और इस बार उसने तेज आवाज में कहा। अभिमान और रचित ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी नजरें नीची हो गई थी। जिस तरह आशिका अब गुस्से में आई थी, उससे साफ था कि अगर उनके मुंह से झूठ या कुछ और निकला तो वो उन दोनों का सर फोड़ देगी।